الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، رمضان کے یہ مبارک دن ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت شکر ہے. ان دنوں کی اس قدر زیادہ فضیلت ہے کہ ان میں جہاں نیکی کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ گناہوں کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ مہینہ بہت محترم مہینہ ہے، اور اس کا احترام کیا ہے، کیسے احترام کریں گے اس کا؟ جیسے ہم بڑوں کا ایک احترام ہوتا ہے، یا کسی چیز کا جگہ کا احترام ہوتا ہے، مثلا مسجد وغیرہ ہے، کعبہ ہے، احترام ہے نا. اسی طرح دنوں میں بھی یا مہینوں میں بھی، کوئی مہینے بہت محترم مہینے، اور انہی مہینوں میں ایک رمضان کا مہینہ بھی ہے جس کا احترام لازم ہے. اور اس کا احترام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ اگر مہینہ فضیلت والا ہو یا جگہ فضیلت والی ہو، تو ایک نیکی کرنے پر کئی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور برائیوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ آپ حرم میں ایک نیکی کرتے ہیں تو کئی گناہ اجر بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ کی قباحت بھی تو بڑھتی ہے. اسی طرح رمضان میں گناہ کرنے سے بچنا ہے. صرف نیکیاں ہی نہیں کرنی، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں اگر ہم نے کوئی برائی کی تو برائی کا زیادہ گناہ لکھا جائے گا. تو اس لیے سوچ سمجھ کے ان دنوں کو گزارنا ہے. یہ نہ ہو کہ ساتھ ساتھ ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گناہ بڑھا رہے ہیں. قیامت کا دن جو ہے نا، اسی لیے اس دن حسرتیں ہوں گی. انسان اپنی کوتاہیوں پہ، اپنی انہی چیزوں کے اوپر بڑا ہی پچھتائے گا، میں نے کیوں کیا اسے. بڑے بڑے لوگ پچھتا رہے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے. ان کی تو برائیاں تو نہیں، لیکن وہ اور نیکیاں ہم کر سکتے تھے، اس پہ پچھتا رہے ہوں گے. اور ہمارے جیسے لوگ جن کے گناہ ہی اتنے ہیں، تو ایسے لوگ پھر یہ سوچیں کہ ہم نے فلاں کام کیوں کیا، کیوں اس میں زندگی گزار دی، کیا ضرورت تھی اس کی، کیوں ہم نے اس بیماری کو، دل کی بیماری کو اتنا پالا، کیوں ہم نے اپنے آپ کو وہاں پر پاک نہیں کیا. تو اس لیے جن چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج کل، ان کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی عام ایسے ہی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف لیکچر نہیں ہے. ان کو واقعی سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا علاج کریں. ذرا سا سی بیماری ہو جائے انسان کے سینے میں، اگر درد ہونے لگے تو فوراً بھاگتا ہے کہ مجھے کوئی دل کی بیماری تو نہیں ہو گئی. اور کیا بات ہے کہ دل گندے میلے کچیلے ہوئے ہوں اور ہمیں پرواہ نہ ہو ان کو صاف کرنے کی. لہٰذا جن چیزوں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو ہم نے اہتمام کے ساتھ دن میں یاد رکھ کے ان کے اوپر عمل کرنا. ہم نے کل تکبر کو سمجھا تھا کہ تکبر کیا چیز ہوتی ہے، کیسے آج ہم اپنے دل کو صاف کریں تکبر سے. یہ بھی ایک دن کا کام نہیں ہے، ہم اس کے اوپر محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو یہ ایک دن نکل جائے گا. اس کی مسلسل پریکٹس کرنی ہوگی. تو ہم اس کا علاج کیسے کریں، آج اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو بڑائی کا احساس ہے نا، یہ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر انسان اسی کو لے کر آگے سے آگے، جیسے ایک پودا ہے اس کو آپ پانی دیتے جاتے ہیں تو وہ بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح اس بڑائی کے زوم کے اندر انسان آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. जितनी उसको नेमतें मिलती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो बजाय इसके कि इंसान आजी इख्तियार करे, अल्लाह के आगे और ज्यादा झुक जाए, उसका हाल ये हो जाता है कि वो तकब्बुर में बढ़ने लगता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, मुख्तलिफ किस्म के तकब्बुर होते हैं, किसी को किसी किस्म का होगा, किसी को किसी दूसरी किस्म का होगा। तो उम्मीद है कि आपने डायग्नोज किया होगा कि मेरे अंदर किस किस्म का तकब्बुर है। अगर किसी के अंदर हसब नसब का तकब्बुर है कि मेरा खानदान बहुत ऊंचा, मेरी बरादरी बहुत ऊंची, मेरा मैं जिस कबीले से बिलोंग करती हूँ वो बहुत ऊंचा है और बहुत जबरदस्त है, तो उसको सोचना चाहिए, अपने अंदर ये सोचे, ये इलाज है कि इसमें मेरी क्या खूबी है। मैंने कोई एप्लीकेशन दी कि मैं इस खानदान में पैदा हूं या क्या, और फिर मेरे आबाओ अजदाद की असलियत क्या है, आज वो जमीन के नीचे पड़े हुए हैं, किस जगह पहुंच गए हैं और उनके साथ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, तो किस बात पे तकब्बुर। और ये कबाइल बरादरियां तो अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाई हैं, बड़ाइयां और शेखियां करने के लिए नहीं बनाई। हम तो फलां होते हैं, हम तो उस खानदान से हैं, आपको हमारा पता है, ये क्या है, इन चीजों से, इन बातों से तकब्बुर की बदबू आती है। और मैंने आपको कल क्या बताया था कि तकब्बुर जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी होगा, जन्नत में नहीं जा सकता। लिहाजा क्या हम अपनी जन्नत खोना चाहते हैं इस तकब्बुर की वजह से? इसी तरह जिसमें अपने हुसन का तकब्बुर है ना, कि मेरा मैं बड़ी हसीन हूं, तो वो भी अपने आप को देखे कि ये हुसन मांद पड़ जाने वाला है, ये तो वो चीज ही नहीं है जिसके ऊपर इंसान कोई तकब्बुर करे। कुछ सालों की बात होती है और उसके बाद वो ही इंसान शीशा भी देखता है तो चेहरे पे इतनी झुर्रियां होती हैं कि दिल भी नहीं करता देखने को, उसी इंसान की क्या हालत हो जाती है। तो इस चीज पे क्या तकब्बुर करना जो इंसान के कंट्रोल में नहीं। और दूसरे, क्या मैंने अपने आप को खुद हसीन बनाया? नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल ही नहीं। हर चीज मांगे तांगे किया हमारे पास, जो फकीर है वो इधर उधर से ले के, कोई यहां से ले ले, कोई यहां से ले ले, कोई यहां से ले ले, तो फिर उसके बाद तकब्बुर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। ये हर इंसान फकीर है, या यूहन्नास अंतुमुल फुकरा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया तुम लोग तो फकीर हो, मोहताज हो। जो मोहताज है, फकीर है, उसने आंखें अल्लाह ताला की दी हुई उनको लेके घूम रहा है, समात अल्लाह की दी हुई, ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ, शक्लें सूरतें अल्लाह की दी हुई, रंग रूप दिए हुए अल्लाह के, जवानी दी हुई अल्लाह की, खानदान दिए हुए अल्लाह की तरफ से, उसका खुद का क्या है? जिसका खुद का कुछ नहीं, वो किस बात पे शेखियां मारता है? देखा जाए तो हर इंसान फकीर है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। जिस दिन इंसान ये असलियत पहचान लेता है ना, ये तकब्बुर खत्म हो जाता है। इसी तरह बास लोगों को अपनी ताकत पे बड़ा जोम होता है, देखिए जवानी के ऊपर मैं ये चीज हूं और मैं पता नहीं क्या, मैं तो दुनिया को फतह कर लूं और मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जवानी की भी एक अपनी बड़ाई होती है, इंसान किसी को खातिर में ही नहीं लाता। तो वो इंसान सोचे कि एक दिन भी तेज बुखार हो जाए तो इतनी ताकत नहीं होती कि बाथरूम तक चले जाए, कोई बीमारी लग जाए तो इंसान कैसे, जवान भी लोग अस्पतालों में जाके देखेंगे किस तरह पड़े हैं। तो वो इंसान जिसकी जवानी इतनी नाकिस हो, वो क्या तकब्बुर करता है? देख लेना, हम अच्छे भले रात को सोते हैं, कभी सुबह उठे और बुखार है और उठ ही नहीं पा रहे, तो ऐसी ताकत पे क्या जोम, एक बुखार की मार है, एक सरदर्द की मार है। फिर जिनको दौलत का बहुत तकब्बुर है, तो वो ये देखें कि ये दौलत साथ रहने वाली नहीं है, ये तो इस दुनिया में भी साथ छोड़ जाती है, इस दुनिया में भी इंसान को बाज दफा तन्हा कर देती है। इसको अपने पास रख के इंसान सोचता है ना कि ये मेरी है और मैं इसके ऊपर बड़ाई करूं। बहुत सारे लोग दुनिया में देखे लुट जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं। फिर अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमाए, जिससे चाहे ले ले, वो मालिक अल मुल्क है। तो तुल मुल्क का मंतशा व तंजिल मुल्क में मंतशा, जिसे चाहे छीन ले बादशाह। तो बड़े बड़ों को नीचे आते देखा है, उनका डाउनफॉल देखा है, तो वो बजाय डरने के तकबर किस बात पे करता है? मेरी बड़ी कोठी, मेरा बड़ा बंगला, मेरे बड़ी गाड़ियां, मेरे जहाज। उसको तो डरना चाहिए ज्यादा कि मेरे पैरों तले से अल्लाह ने ये जमीन निकाल दी ना, तो मैं खड़ा होने के काबिल भी नहीं होऊंगा। तो मैं तो और डर के रहूं। एक फकीर है, उसको क्या डर, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। एक जिसके पास ज्यादा है ना, वो ज्यादा डरे, मेरे अल्लाह ने मुझसे छीन लिया ना अगर, तो मेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो जितनी नियमतों में होता है, वो उसको उनकी आदत पड़ जाती है, फिर उनके बगैर रह नहीं सकता। इसीलिए आप देखते हैं अमीर लोग इतने होते हैं, फिर उनके साथ ऐसे कोई चीज हो जाती है, मतलब बैंकरप्ट वगैरह हो जाते हैं, तो वो कैसे खुदकुशियां करते हैं? बिजनेस फेल हो गया, उनको कैसे हार्ट अटैक हो जाते हैं? तो इसलिए ये दौलत का तकब्बुर ना करे कोई, ये आनी जानी चीज है, ये आज है कल नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बड़े मालदार थे, उनकी औलादें आज लोगों की ज़कातों के ऊपर पल रही। आपको भी जरूर ऐसे लोगों का पता हो। तो किस चीज का जोम है? ये वो चीज है जो दुनिया में भी छोड़ जाती है, मरते वक्त तो छोड़ना ही है, सबने ही छोड़ जाना है, लेकिन ये वो चीज है जो दुनिया में भी देर पा नहीं है। कोई नहीं जानता कि कल तक भी होगा ये सब कुछ या नहीं होगा। तो दौलत का किस बात पे तकब्बुर? फिर इल्म की वजह से भी इंसान को बड़ा तकब्बुर होता है। तो इसको सोचना चाहिए ऐसे बंदे को कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, तो मेरा इल्म क्या है? मेरे से ज्यादा औरों का है, उससे ज्यादा किसी और का है, उससे ज्यादा किसी और का है। जो समझता है ना कि मैं बहुत इल्म वाला हूँ, मैं बड़ा बाहुनर, मेरे से ज्यादा किसको नॉलेज होगा, मुझे इतना चीजों का पता, मुझे तो हर चीज का पता, वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। क्योंकि जिसको ये समझ आ जाती है कि इल्म होना, सारी दुनिया का इल्म जो है ना, वो ऐसे है जैसे वो खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों जब जा रहे थे, तो परिंदे की चोंच में एक कतरा पानी का था उस वक्त खजर अलैहिस्सलाम ने क्या बताया था मूसा अलैहिस्सलाम को? सब का इल्म, मेरा तुम्हारा और पूरी दुनिया का इल्म ऐसे है जैसे ये कतरा है इसके चोंच में, और अल्लाह ताला का इल्म ऐसे है जैसे ये समंदर। तो उस कतरे में से मुझे और आपको क्या मिला होगा? और मैं बड़े इल्म वाला हूं, मुझे बड़ा नॉलेज है। क्या नॉलेज है? इंसान देखे, देख लें आप, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े उनके नाम होते हैं, मगर जो आंख का डॉक्टर है, उसको एक आंख की एक चीज का पता है, उससे अगली चीज का कोई पूछ लो उसको नहीं पता, और ऑर्गन का तो दूर की बात। जो हड्डियों का डॉक्टर है, वो भी सारी हड्डियों का नहीं इतना जानता, और अज़ा को क्या जानता होगा। तो इसलिए इंसान सोचे कि मेरा इल्म नाकिस है, ये तो अधूरा इल्म है, ये तो कोई इल्म ही नहीं है, और मेरे से ज्यादा और लोगों के उलूम है। और जिसको अपनी नेकी का तकब्बुर हो जाए, जो बदतरीन है तकब्बुर में, वो ये सोचे कि ये नेकी की तौफीक अल्लाह ने दी तो मैं कर पाई, मेरे अपने बस में तो थी ही नहीं। अगर मैं नमाज बहुत पढ़ती हूँ, मैं तहज्जुद गुजार बहुत हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे उठाता है उस वक्त, तो मैं उठ के खड़ी हो सकती हूँ। अल्लाह मेरी टांगे शल कर दे, या मुझे नींद का इतना मेरे ऊपर गलबा कर दे, तो मैं कहाँ से उठूँ? बहुत सारे लोग हैं नहीं पढ़ सकते तहज्जुद। क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए वो कहते हैं हमें नींद बहुत आती है उस वक्त, हम इतने नींद में होते हैं हम उठ ही नहीं सकते। तो अब इससे ही आप अंदाजा कीजिए कि जब इंसान ये कहता है ना कि मैं पढ़ती हूँ, मैं करती हूँ, तो वो मैं नहीं है, वो अल्लाह करा रहा है उससे। अगर मैं ज्यादा कुरान पढ़ पाती हूँ तो वो मेरी कोई काबिलियत नहीं, वो अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी। तो जिसको तौफीक भी खुद नहीं हो सकती, और हम अल्लाह से देखें नेकियों की तौफीक मांगते हैं ना, इसका मतलब हमारे अंदर ताकत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जरा सा सर दर्द हो जाए तो हमसे कुछ किया नहीं जाता, सारी नेकियां धरी की धरी रह जाती। ये तो हमारी हालत है, तो किस बात के ऊपर फिर इतना वो फखर कि मैं बड़ी नेक हूं और मैं नेकियां करती हूँ। दूसरे ये बात, अब ये देखें किसी को भी नहीं पता, हम में से कोई नहीं कह सकता हमारा कौन सा अमल कबूल है, हम में से नहीं कोई जानता, पता नहीं कबूल भी हुआ कि नहीं। तो उस बात पे क्या तकब्बुर करना जिसका ये नहीं पता कि ये पता नहीं रिजेक्ट हुई है कि कबूल हुई। कैसे आप यहाँ पे तकब्बुर कर सकते, कैसे अपनी नेकी का जोम रख सकते, पता नहीं अल्लाह की नजरों में हम क्या हैं। जब इंसान ये सोचता है ना तो ये तकब्बुर खत्म हो जाता है। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जितना अपनी हैसियत को समझेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर आजी आएगी। मैं क्या चीज हूं, अपनी औकात को समझें, अपने आप को समझ लें इंसान। ये जो तकब्बुर होता है ना, ये असल में धोखा है जो इंसान अपने आप को दे रहा होता है, ये असलियत नहीं है, धोखा है। और इस धोखे के अंदर पढ़ के इंसान देखो क्या अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। लिहाजा तकब्बुर को अपने अंदर से निकालना है, तकब्बुर की बीमारी इंसान को जहन्नुम तक पहुंचा देती है। एक रिवायत में आता है कि एक आदमी दो चादरें पहन के बड़े गुरूर की चाल चल रहा था, अल्लाह ताला को इतनी नापसंद आई ना उसकी चाल के अल्लाह ने उसको जमीन में गर्क कर दी, और वो कयामत तक इसी में धंसता रहे। तो मुतकब्बिर शख्स वो उसका ठिकाना तो जहन्नुम है। मुतरफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मैं सारी रात सो के गुजार दूं और पशेमानी निदामत की हालत में सुबह करूं तो ये हालत ज्यादा बेहतर है इससे कि मैं सारी रात कयाम करूं और फिर सुबह गुरूर तकब्बुर की हालत में उठूं कि देखा मैंने तो कितनी इबादत की है। इंसान अपनी इबादतों को बड़ा समझने लगे। तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर था कि मैं सोया रहता, कम अज कम सुबह उठता तो पशेमानी तो होती। और ये क्या कि सारी रात जी हमने तो पूरी ताक रातें भी जाके गुजारी, हमने तो ऐसे किया, हम तो पूरी रात नहीं सोए, हम किस बात का तकब्बुर। अल्लाह के ऊपर कोई एहसान है? हम ये भूल जाते हैं कि ये तो अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी मुझे। तो ये बातों को भी बर्बाद कर देने वाली चीज है ये तकब्बुर। किसी चीज में भी आ गया ना वो आपका अमल बर्बाद, चाहे आप चैरिटी कर रहे हैं, चाहे आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप नमाजें पढ़े, सब खत्म अगर उनके अंदर तकब्बुर आ गया। तो बहुत ज्यादा अपनी बड़ाइयां ना करें, आजी के साथ रहें। एक और चीज जो हमने इस महीने में सीखनी है वो ये कि जहां पे भी हम बैठे अल्लाह का जिक्र करना ना भूलें, क्योंकि जिस मजलिस में भी अल्लाह ताला का जिक्र ना किया जाए कयामत के दिन वो हसरत बन जाएगी। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग किसी जगह पर मजलिस करें, यानी आप कहीं पे भी बैठते हैं किसी गैदरिंग में भी, चाहे अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी दावत पे गए हैं दोस्त आप रिश्तेदारों में बैठे हैं, और उसमें अल्लाह का जिक्र ना करें तो कयामत के दिन वो मजलिस बाई से हसरत होगी, यानी इंसान पछताएगा हाय मैं क्यों चली गई, मैं उनके साथ क्यों बैठी। तो अब नोटिस करें कि कितनी मजलिसें ऐसी होंगी जिन पे हम कयामत के दिन पछताएंगे। तो आज तक हमने जिंदगी के अंदर जहां जहां बैठे हैं कभी सोचा आपने कि वो कितनी होंगी? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो आदमी किसी रास्ते पर चलते हुए अल्लाह का जिक्र ना करे, यानी जैसे हम गाड़ी में निकलते हैं या हम वॉक पे निकले, तो वो चलना भी कयामत के दिन उसके लिए बायस हसरत होगा कि मैंने उस वक्त में जब चली थी तो मैंने क्यों नहीं अल्लाह का जिक्र किया था। इसी तरह तीसरी चीज फरमाई, और जो आदमी अपने बिस्तर पर आए और वहां अल्लाह का जिक्र ना करे तो वो सोना भी इसके लिए बायस हसरत होगा कि मैं क्यों बिस्तर पर गई थी और मैं सोई नहीं। और कितनी दफा ऐसा होता है बातें करते करते सो जाते हैं, या फिर हम लेटे हैं और पता नहीं कितनी हमें सोचें आती रहती हैं और वो सोचते सोचते ही हम सो जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करना हमें कभी याद ही नहीं रहता। हालांकि जो सोने से पहले वजू करके और जिक्र करके सोए तो उसकी सारी ही रात इबादत में लिखी जाती है, सारी रात। तो जब बिस्तर पर जाएं तो जैसे पहले भी बात हुई कि हम सोने की दुआएं पढ़ें, इस तरह जो भी मुसलमान बिस्तर पे सोते वक्त कुरान की कोई भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है कि उसके जागने तक कोई तकलीफ दे चीज उसके करीब ना आए। तो सूरह फलक पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ सकते हैं आप। इस तरह हमने पहले भी बात की थी कि सवारी पे हमने अल्लाह का जिक्र करना है, कुरान पाक पढ़ना है, हमने बात की थी कि ये सुन्नत खत्म हो गई हुई है, तो कुरान भी पढ़ सकते हैं, तस्बीहात भी कर सकते हैं, मगर जब भी सवार हों तो एक तो दुआ पढ़ लें सवारी की, दूसरे ये कि रास्ते में भी अल्लाह का जिक्र ही करते जाएं, वरना वो रास्ता ही जहां पे भी हम गए हैं कयामत के दिन ये ना हो कि वो हमारे लिए हसरत बन जाए। क्योंकि एक ताबे थी मसरूक, उन्होंने इतनी प्यारी बात फरमाई है, फरमाया इंसान का कोई कदम ऐसा नहीं है, कोई कदम जिसके उठाने पे या तो नेकी या बुराई ना लिखी जाए, या तो नेकी लिखी जाएगी या बुराई लिखी जाएगी। क्या चाहते हैं हम, हमारे लिए क्या लिखा जाए। तो लिहाजा घर से निकलना है या किसी मजलिस में बैठना है या सोना है, कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। और आज का जो जिक्र है वो भी इसी हवाले से है कि जो खाने के बाद हमने ये जिक्र करना है, और इसके पढ़ने से क्या होगा, अगले पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। वो जिक्र क्या है, देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कहते ही हैं खाने के बाद, लेकिन आप ये सारा आगे ऐड कर लें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा अत्ताम, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये खिलाया खाना, ये खाना मुझे खिलाया, वरज़क़नी और मुझे रिस्क अता फरमाया, मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वत, मेरी कोई ताकत और कुव्वत नहीं थी कि मैं खुद खा पाती, मैं खुद ये ले पाती, अल्लाह ही का शुक्र है जिसने मुझे ये खिलाया और मुझे रिस्क दिया। तो ये जिक्र करके हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कयामत का दिन हसरत का दिन होगा, तो इंसान कहेगा है देखें ये कितनी, जो मैं आपको रोजाना बताती हूँ, जैसे कल आपको मैंने बताया सुभान अल्लाह 100 दफा पढ़नी है, 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। हाँ, और उसके साथ एक और बात बता दूं जो मैं कल नहीं बता पाई थी कि 1000 गुनाह भी माफ हो जाएंगे उस दिन के 1000 नेकियां लिखी जाएंगी और 1000 गुनाह माफ होंगे। अब कितना आसान था पढ़ना, अब वहां पे क्या हसरत नहीं होगी कि 100 दफा पढ़ना ही था ना, मुझे क्या मुसीबत थी कि मैं नहीं पढ़ती थी। तो यहाँ पे ये नेकियां इतनी आसान है, इतनी समझ ले मुफ्त में मिल रही हैं, फिर भी हम परवाह ना करें। हालांकि कयामत के दिन तो ये तो 1000 नेकियों की बात है ना, एक नेकी जो जर्रे के बराबर भी होगी ना उसको भी तोला जाएगा, उसकी भी कदरदानी अल्लाह ताला करेगा। तो हमें पता चलता है हदीस से कि गुनाहों और नेकियों को जब तोला जाएगा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह अगर नेकी से एक जर्रे बराबर भी बढ़ गए तो बंदा जहन्नुम में चला जाएगा, और नेकी अगर गुनाहों से एक जर्रे बराबर भी बढ़ गई तो बंदा जन्नत में चला जाएगा, यानी वो तोले जाएंगे तराजू में। और एक जर्रा कितना होता है, कितना होता है आपके ख्याल में, कितना होगा, उसकी क्या डेफिनेशन करेंगे आप। अभी आप पढ़ते हैं मैं अमल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा व मैं अमल मिसकाला जर्रतिन शर्रन यरा, तो बताए ना क्या होता है जर्रा। जर्रा वो चीज होती है जिससे छोटी कोई चीज हो ही ना दुनिया में, कितनी जबरदस्त डेफिनेशन है। अगर ये बता दिया जाता राई के दाने के बराबर होता है जर्रा, इसके बराबर होता है, तो हम सोचते हैं उससे छोटी तो कई चीजें होती हैं, लेकिन जब ये पता चल गया जर्रा वो चीज है जिस जो तकसीम हो ही नहीं सकता, उससे आगे उसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। इतनी छोटी चीजें नहीं है, ऐसी ऐसी कई चीजें हैं जो नजर भी नहीं आती, माइक्रोस्कोपिक है। तो सोचें कि इतनी छोटी चीज भी तुलनी है, जिनकी इतनी छोटी चीजें भी तुलें, तो ये तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर, इनसे तो मीजान भर जाते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये इनसे जमीन और आसमान के दरमियान का खला भर जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए इनको हकीर ना समझे, ठीक है। ये किसी ने कहा है कि लोगों को जॉब का भी तकब्बुर होता है, ये तो बहुत ही बेवकूफी है कि किसी को जॉब का तकब्बुर, इसलिए कि जॉबें तो बहुत आनी जानी चीज है। एक दिन कोई जॉब पे जाता है और वो उसको कहते हैं कि आपसे तुम फारिग हो जाओ घर, तो इसका तकब्बुर तो बहुत ही बेवकूफी है अगर कोई करता है। चले, आज की जो दुआ है वो भी बहुत जामे दुआ है, छोटी सी दुआ लेकिन इतनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआएं हैं। सोचिए हमें तो मांगनी भी नहीं आती दुआएं, कि हम क्या किस तरह से एक मतलब जामे दुआ मांगे, लेकिन जो मसनून दुआएं वो कितनी प्यारी हैं। आज की दुआ है, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा, ए अल्लाह सारे ही कामों का मेरा अंजाम अच्छा कर देना, जितने मेरे काम है ना। देखिए अंजाम अच्छा तो सब अच्छा, ऑल इज गुड दैट एंड्स गुड गुड, ठीक है। तो सब कामों में उसका एंड अच्छा करना, चाहे वो मेरी जिंदगी है, चाहे वो मेरे इल्म है, चाहे वो मेरी जॉब है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसका आखिर जो है, एंडिंग जो है वो अच्छी हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। और वह अजिरना मिन खिजी दुनिया व अदाबिल आखिरा, अल्लाह मुझे दुनिया की भी रुसवाई से बचाना और आखरत के अजाब से बचाना। दुनिया में भी इंसान कहता है अल्लाह बदनामियों से बचाना, अल्लाह बेइज्जतियों से जलील होने से बचा देना, दुनिया में भी इज्जत अता फरमाना। इंसान रोटी थोड़ी खा लेता है लेकिन कहता है इज्जत में कमी ना हो। तो इज्जत इंसान की जरूरत है इस दुनिया के अंदर। तो लिहाजा इस दुआ के अंदर सारे ही अपने कामों का अच्छा अंजाम मांग लिया, और दुनिया की जिल्लत और आखरत के अजाब से भी पनाह मांग ली। और बहुत ही ये प्यारी दुआ है। अपनी नमाज को खूबसूरत बनाने के लिए आज हमने क्या करना है कि जब हम दो सजदे कर लें ना, दो सजदों के बाद भी एक जलसा इस्तराहत होता है, यानी दूसरी दूसरा सजदा करने के बाद जब आप उठते हैं तो सीधे खड़े ना हो जाएं, बल्कि बैठें, जरा देर बैठें फिर खड़े हों, ठीक है। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम बस सजदे में दूसरे में जाते हैं और फिर डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, बैठते ही नहीं हैं। तो ये भी एक सुन्नत है, और ये सुन्नत भी आज खत्म हो चुकी है। तो हम इस सुन्नत को भी जिंदा करें और इसके जरिए अपनी नमाज को भी खूबसूरत बनाएं, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।